एक साल पहले, आस्तिक और अरुणिमा के तलाक के 10 दिन बाद, आस्तिक की कार सीधे रायचंद मेंशन के सामने खड़ी हुई। उसने गुस्से में कार का दरवाज़ा खोला और तेज कदमों से मेंशन के अंदर चला गया। उसका एक ही मकसद था, पुष्कर रायचंद से आखिरी बातचीत करना और अपनी माँ नेहा रायचंद को अपने साथ ले जाना। आस्तिक वहाँ पुष्कर जी के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करने आया था और अपनी माँ को उस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालना चाहता था। आस्तिक जानता था कि पुष्कर रायचंद आगे भी नेहा जी का इस्तेमाल करके आस्तिक को ब्लैकमेल करेगा और उसकी जिंदगी में दखलअंदाजी देगा। इसीलिए वो अपने पिता से बात करना चाहता था और एक आखिरी फैसले पर पहुंचना चाहता था। वैसे भी आस्तिक ने पुष्कर जी के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, लेकिन नेहा जी के साथ वो अपना रिश्ता नहीं खत्म कर सकता था, क्योंकि माँ के साथ रिश्ते खत्म करना आसान नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो मेंशन के गेट पर पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। ये देखकर आस्तिक का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, तुम लोगों को मारना है क्या? रास्ता क्यों रोक रहे हो मेरा? एक सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा, आई एम सॉरी सर, हम आपका रास्ता जानबूझकर नहीं रोक रहे हैं। दरअसल हमें बॉस ने ही ऐसा करने के लिए कहा है। दरअसल वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर आप मेंशन में आएं तो आपको अंदर ना जाने दिया जाए। आस्तिक ने गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे दूर छटकते हुए कहा, अपनी औकात में रहो, मुझे मेरी माँ से मिलने से आज दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आस्तिक को इतना गुस्से में देखकर बाकी सब अपने कदम पीछे ले लेते हैं। आस्तिक गुस्से में दरवाजे पर लात मारता है और मेंशन का दरवाज़ा एक झटके से खुल जाता है। आस्तिक गुस्से में घर के अंदर दाखिल होता है और हॉल में खड़े होकर जोर से चिल्लाता है, पुष्कर रायचंद। आस्तिक की आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर तरफ से वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी किसी ने आस्तिक के कंधे से पकड़कर उसे पीछे की तरफ घुमाया और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। आस्तिक का गाल दूसरी तरफ झुक गया, लेकिन उसे हैरानी नहीं हुई। उसने अपना चेहरा उठाकर देखा और सामने गुस्से और नाराज़गी से भरा नेहा रायचंद का चेहरा था। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? आस्तिक, अपने पिता को नाम से बुला रहे हो? पागल हो गए हो क्या? उस लड़की के लिए तुम इस हद तक जा सकते हो कि अपने पिता के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो? आज तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम अपने पिता को उनके घर में आकर उनके नाम से बुला रहे हो? जिनके सामने तुम नज़र उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, आज आवाज़ उठाकर बात कर रहे हो? ये सब उस बच्चलन लड़की अरुणिमा के कारण हुआ है ना? नेहा जी ने गुस्से में आस्तिक से कहा, तो अगले ही पल आस्तिक ने अपना हाथ उठाकर नेहा जी को रोक दिया। उसकी वे बड़ी बड़ी लाल डरावनी आंखें किसी को भी डरा सकती थीं, लेकिन शायद नेहा की निगाहों से नहीं डरती थीं। वो अभी भी आस्तिक की आंखों में आंखें डालकर खड़ी थीं, लेकिन आस्तिक ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा, मैं अरुणिमा के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगा। आपको कोई हक नहीं है मेरी अरुणिमा पर उंगली उठाने का। नेहा जी भले ही आस्तिक को गुस्से में देख रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने नेहा जी के हाथ पाँव में कंपकंपी पैदा कर दी और उनके कदम अपने आप पीछे हो गए। वो अपने दांत पीसते हुए आस्तिक को देखकर कहती हैं, मतलब पुष्कर जी सही थे, उस लड़की ने तुम्हें पूरी तरह से बहका दिया है और तुम उसकी ही जुबान बोलने लगे हो। उसने तुम्हें अपने परिवार के खिलाफ खड़ा कर दिया है और आज तुम्हारे लिए वो लड़की इतनी बड़ी हो गई है कि तुम अपने माता पिता से इस तरीके से बात कर रहे हो। हैरानी हुई देखकर, कल तक तो उस लड़की का नाम लेना भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं था। उसे फूहड़, गवार, जाहिल अरुणिमा कहा करते थे। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा नफरत तो तुम उसी से करते थे, पर आज उसके लिए कुछ सुनना भी तुम्हें गवारा नहीं हो रहा है। आस्तिक ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगा। उसे सच में याद था कि उसने अरुणिमा को किन जलील और घटिया नामों से नवाजा था, लेकिन अब उसे अपने ही शब्दों पर अफसोस हो रहा था। उसने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया और नेहा जी को देखते हुए कहा, मैं यहाँ पर आपसे मेरे और मेरी बीवी के बीच चल रहे मनमुटाव के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ आया हूँ ताकि पुष्कर रायचंद के साथ अपने सारे रिश्ते को ख़त्म कर सकूँ और आपको अपने साथ लेकर जा सकूँ। मैं उस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे साथ मेरे घर चलिए। नेहा जी 10 मिनट तक तो आस्तिक को घूरती रही और उसके बाद उन्होंने आस्तिक की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम यहाँ पर अपने किए पर माफ़ी मांगने नहीं आए हो, बल्कि पुष्कर जी से अपना रिश्ता ख़त्म करने आए हो और मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो। आस्तिक, पागल हो गए हो क्या? आखिर मेरा वो महत्वाकांक्षी बेटा कहाँ चला गया जिसे मैंने जन्म दिया था और जो हमेशा चाहता था कि उसे क्या चाहिए था? अपना लक्ष्य, माफिया में अपना नाम, अपने पिता का उत्तराधिकारी बनना, यही तुम्हारा सपना था। तुम भूल गए आस्तिक, इसी के लिए तुमने अपने पहले प्यार को छोड़ दिया और उस लड़की से शादी की जिसे तुम जानते भी नहीं थे। उस जिल्लत भरी शादी को तुमने बर्दाश्त किया ताकि तुम्हें वे सब मिल सकें जो तुम हासिल करना चाहते थे।